श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 53 कृष्ण द्वारा रुक्मणी का हरण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुमारी वैदर्भी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्काते हुए उससे इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, जिस तरह रुक्मणी का मन मुझ पर लगा है उसी तरह मेरा मन उस पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मी ने हमारा विवाह रोक दिया है। वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ लाऊंगा जिस तरह काट से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मधुसूदन रुक्मणी के विवाह का सही सही लग्न का समय भी समझ गए। अतः उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे दारुक, मेरा रथ तुरंत तैयार करो। दारुक भगवान का रथ ले आया जिसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े जुटे थे। फिर वह अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। भगवान शौरी अपने रथ में सवार हुए और फिर ब्राह्मण को चढ़ाया। तत्पश्चात भगवान के तेज घोड़े एक रात में ही उन्हें अनर्थ जिले से विदर्भ ले गए। कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था। राजा ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी। राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ कराया और तब उन पर जल छिड़कवाया। उसने विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया। नगर के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने और अपने अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया और बहुमूल्य हार, फूल की मालाएं तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए। उनके भव्य घर अगरु की सुगंध से भर गए। हे राजन, महाराज भीष्मक ने पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण करवाया। दुल्हन ने अपने दांत साफ किए और फिर स्नान किया और इसके बाद उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नए वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अत्यंत सुंदर रत्न जटित गहनों से सजाया गया। उत्तमोत्तम ब्राह्मण जनों ने वधू की रक्षा के लिए ऋग, साम तथा यजुर्वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और अथर्व वेद में पटु पुरोहित ने नियंता ग्रहों को शांत करने के लिए आहुतियां दी। राजा ने विधि विधानों के ज्ञान में दक्ष व अद्वितीय ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र गौवें तथा गुड़ मिश्रित तिलों की दक्षिणा दी। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समस्त कृत्यों को संपन्न करने के लिए मंत्रोच्चार में पटु ब्राह्मणों को लगाया था। राजा दमघोष ने मद टपकाते हाथियों लटकती सुनहरी सांकलों वाले रथों तथा असंख्य घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ कुंडिन की यात्रा की। विदर्भ राज भीष्मक नगर से बाहर गए और राजा दमघोष से विशेष सत्कार के प्रतीकों के साथ मिले। फिर भीष्मक ने दमघोष को इस अवसर के लिए विशेष रूप से निर्मित आवास गृह में ठहराया। शाल्व जरासंध दंत वक्र तथा विदुरत जो शिशुपाल के समर्थक थे वे सभी पौंड्रक तथा हजारों अन्य राजाओं के साथ आए। शिशुपाल को दुल्हन दिलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम से ईर्ष्या करने वाले राजाओं ने परस्पर यह निश्चय किया, यह कृष्ण यदि बलराम तथा अन्य यदुओं के साथ दुल्हन का अपहरण करने यहाँ आता है तो हम सब मिलकर उससे युद्ध करेंगे। अतः वे ईर्ष्यालु राजा अपनी सारी सेनाएं तथा सारे सैन्य वाहन लेकर विवाह में गए। जब बलराम ने विपक्षी राजाओं की इन तैयारियों तथा कृष्ण द्वारा दुल्हन का हरण करने के लिए अकेले ही प्रस्थान किए जाने के बारे में सुना तो उन्हें शंका होने लगी कि कहीं युद्ध न ठन जाए। अतः वे अपने भाई के स्नेह में निमग्न होकर अपनी विशाल सेना के साथ तेजी से कुंडिन के लिए कूच कर गए। उनकी सेना में पैदल तथा हाथी घोड़े और रथ पर सवार सैनिक थे। भीष्मक की सुप्रिया पुत्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आए हुए नहीं देखा तो उसने इस प्रकार सोचा। राजकुमारी रुक्मिणी ने सोचा, हाय, रात बीत जाने पर मेरा विवाह होना है, मैं कितनी अभागिनी हूँ। कमल नेत्र कृष्ण अभी भी नहीं आए, मैं नहीं जानती क्यों, यहाँ तक कि ब्राह्मण दूत भी अभी तक नहीं लौटा। लगता है कि निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझ में कुछ घृणित बात देखी हो जिससे वे मेरा पाणी ग्रहण करने नहीं आए। मैं घोर अभागिनी हूँ क्योंकि न तो सत्रष्टा विधाता मेरे अनुकूल हैं, न ही महेश्वर शिव जी अथवा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्राणी गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात है मेरे विपरीत हो गई है। इस तरह से सोच रही तरुण बाला ने, जिसका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोच कर कि अब भी समय है, अपने अश्रु पूरित नेत्र बंद कर लिए। हे राजन, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी तो उसे लगा कि उसकी भाई जांग भाई भुजा तथा भाई आंख फड़क रही है। यह इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली है। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण कृष्ण के आदेशानुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने राजमहल के अंतःपुर में आया। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध मंद हास के साथ उससे पूछा, ब्राह्मण ने उनसे यदुनंदन के आगमन की सूचना सुनाई और उनके साथ विवाह करने के भगवान के वचन को कह सुनाया। राजकुमारी वैदर्भी कृष्ण का आगमन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। पास में देने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न पाकर उसने ब्राह्मण को केवल नमस्कार किया। जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक है, तो वह भाजे भाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटे लेकर आगे बढ़ा। उन्हें मधुपर्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटे देकर उसने निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना एवं उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। इस तरह भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को सारी वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनैतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। जब विदर्भ वासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं, तो वे सब उनका दर्शन करने गए। अपनी आंखों की अंजुली से उन्होंने उनके कमल मुख के मधु का पान किया। नगर वासियों ने कहा, एकमात्र रुक्मणी उनकी पत्नी बनने के योग्य है और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने से राजकुमारी वैष्णवी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति हैं। हम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किए हों, उनसे तीनों लोकों के सत्रष्टा अच्युत प्रसन्न हों और वे वैदर्भी का पाणी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखलाएं। अपने उमड़ते प्रेम से बंद कर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी अंग रक्षकों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतःपुर से बाहर आई। रुक्मणी मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ माताएं तथा सखियां थी और वे राजा के बहादुर सैनिकों द्वारा संरक्षित थी, जो अपने हथियार ऊपर उठाए हुए सन्नद्ध थे। रुक्मणी केवल कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को ध्यानस्थ किए थी। मार्ग भर में मृदंग, शंख, पणव, तुरही तथा अन्य बाजे बजाए जा रहे थे। दुल्हन के पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थी, जो नाना प्रकार की भेंटे लिए थी। उनके साथ ब्राह्मणों की सजी धजी पत्नियां गीत गा रही थी और स्तुतियां कर रही थी। वे माला, सुगंध, वस्त्र तथा आभूषण की भेंटे लिए थी। साथ ही पेशेवर गवैये, संगीतज्ञ, सूत, मागध तथा बंदी जन थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी ने सबसे पहले अपने कमल सदृश पैर तथा हाथ धोए और तब शुद्धि के लिए आचमन किया। इस तरह पवित्र एवं शांत भाव से वे माता अंबिका के समक्ष पधारी। ब्राह्मणों की बड़ी बूढ़ी पत्नियां जो विधि विधान में पटु थी, रुक्मणी को भवानी को नमस्कार कराने ले गई, जो अपने प्रियतम भगवान भव शिवजी के साथ प्रकट हुई। राजकुमारी रुक्मणी ने प्रार्थना की, हे शिव पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ। कृपया यह वर दे कि भगवान कृष्ण मेरे पति होए। रुक्मणी ने जल, सुगंधी, अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण तथा अन्य संस्तुत उपहारों से और दीपकों की पंक्तियों से देवी की पूजा की। उन्हीं के साथ साथ विवाहिता ब्राह्मणियों ने उन्हीं वस्तुओं से और नमकीन, पुए, पान सुपारी, जनेऊ, फल तथा गन्ने के रस की भेंटे चढ़ाकर पूजा की। स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और फिर आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण किया। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और वह रत्न जटित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर आई। रुक्मणी भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी, जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। इस तरह राजा गण उनके सुकुमार सौंदर्य, उनकी सुघड़ कमर तथा कुंडलों से सुशोभित मुख को निहारने लगे। उनके कूल्हे पर रत्न जटित करधनी शोभा पा रही थी। उनके स्तन अभी उबर ही रहे थे और उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थी। वे मधुर हंसी से युक्त थी और उनके चमेली की कली जैसे दांतों से उनके बिंब जैसे लाल होठों की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। जब वे राजहंस जैसी चाल से चलने लगी तो उनके रुंझुन करते पायलों के तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीर जन पूर्णतया मोहित हो गए। काम वासना से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। दरअसल जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा लजीली चितवन देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए और वे मूर्छित होकर अपने अपने हाथियों, रथों तथा घोड़ों पर से जमीन पर गिर पड़े। जुलूस के बहाने रुक्मणी ने अकेले कृष्ण के लिए ही अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे चलाए मान कमल कोश रूपी दो चरणों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने मुख पर लटकते केश गुच्छों को हटाया और अपने समक्ष खड़े राजाओं की ओर कनखियों से देखा। उसी समय उन्हें कृष्ण दिख गए। तभी अपने दुश्मनों के देखते देखते भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया, जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए आतुर थी। राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर माधव ने राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया। वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच से अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। भगवान के जरासंध जैसे शत्रु राजा इस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर सके। वे चीख पड़े, ओह, हमें धिक्कार है। यद्यपि हम बलशाली धनुर्धर हैं, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी तरह छीन लिया है जिस तरह छोटे छोटे पशु सिंहों का सम्मान हर ले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा रुक्मणी का अपहरण नामक 53वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।